एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं डेविड किर्कपैट्रिक की 2010 में आई एक बहुत ही चर्चित किताब द फेसबुक इफेक्ट के बारे में।
हाँ, ये किताब उस कंपनी की कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं, दुनिया को जोड़ने का एक नया तरीका दिया।
बिल्कुल, और किर्कपैट्रिक का ये जो विश्लेषण है ये फेसबुक के उन शुरुआती तूफानी सालों का एक आंखों देखा हाल जैसा है।
और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये तब लिखा गया था जब फेसबुक को लेकर एक गजब का पॉजिटिव माहौल था, एक आशावाद था।
हाँ, मतलब वो दौर जब कंपनी एक ग्लोबल ताकत बन रही थी, लेकिन जो बड़े विवाद हुए बाद में उनसे ठीक पहले का समय।
सही, तो आज हम इसी कहानी पर फोकस करेंगे और खास तौर पर इसके पीछे जो शख्स हैं, मार्क ज़करबर्ग, उनकी यात्रा को समझेंगे।
बिल्कुल, मतलब कैसे हार्वर्ड के एक डॉर्म रूम से कोई शुरू करे और सिर्फ क्या कहते हैं 6 साल के अंदर।
हाँ, 6 साल से भी कम में।
एक 20-22 साल का लड़का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जिसने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो सोशल मीडिया युग की शुरुआत की कहानी है।
सही, ये समझने की कहानी है कि कैसे हमारे बात करने का तरीका, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका, यहाँ तक कि प्राइवेसी की हमारी सोच, सब कुछ बदल गया।
हमेशा के लिए बदल गया, और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है क्योंकि उन शुरुआती फैसलों का असर हम आज भी महसूस करते हैं, है ना?
बिल्कुल, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ज़करबर्ग की कहानी और फेसबुक के बनने की इस पूरी यात्रा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं।
जरूर।
तो ज़करबर्ग की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी से। उनके पिताजी डेंटिस्ट थे और माँ साइकियाट्रिस्ट। किर्कपैट्रिक बताते हैं कि घर का माहौल काफी पढ़ने लिखने वाला था।
हाँ, मतलब इंटेलेक्चुअल माहौल था जहाँ सवाल पूछने, नई चीजें जानने को बढ़ावा मिलता था, और कंप्यूटर में तो उनकी दिलचस्पी बहुत जल्दी पैदा हो गई थी।
हाँ, और ये दिलचस्प है कि उनके पिता ने ही उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई थी,
सोचिए।
और कमाल ये है कि मिडिल स्कूल में ही उन्होंने ज़कनेट बना दिया था।
अच्छा,
वो क्या था?
वो एक मैसेजिंग प्रोग्राम था अपने पिता के डेंटल ऑफिस के स्टाफ के लिए, उनके बीच बातचीत आसान करने के लिए।
अरे वाह, मतलब तब से ही ये कम्युनिकेशन वाली बात उनके दिमाग में थी, टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ना।
बिल्कुल, ये एक अर्ली साइन था। फिर वो फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी गए, जो काफी प्रेस्टीजियस स्कूल है। वहां उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और बेहतर हुई।
और वहीं पर उन्होंने वो सिनेप्स मीडिया प्लेयर बनाया था ना?
हाँ, हाई स्कूल में वो सॉफ्टवेयर जो आपके गाने सुनने की आदतें सीख कर आपको नए गाने रेकमेंड करता था।
ये तो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही नई चीज रही होगी।
बहुत नई, इतनी कि माइक्रोसॉफ्ट, AOL जैसी बड़ी कंपनियों ने उसे खरीदना चाहा।
लेकिन उन्होंने बेचा नहीं।
नहीं, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। ये बात उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसा कि किर्कपैट्रिक भी कहते हैं, पैसा शायद पहली मोटिवेशन नहीं थी,
तो क्या था?
शायद कुछ यूजफुल बनाना, कुछ ऐसा बनाना जिसे लोग इस्तेमाल करें, शेयर करें, वो ज्यादा जरूरी था बजाय उसे बेचकर तुरंत पैसा बनाने के।
ये सोच तो आगे भी उनके फैसलों में दिखती है। फिर 2002 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए।
हाँ, वहाँ कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
हाँ, क्योंकि फेसबुक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, वो लोगों के व्यवहार, उनके रिश्तों के बारे में भी तो है।
बिल्कुल, और हार्वर्ड का जो सोशल माहौल था वो भी शायद एक फैक्टर बना। किताब बताती है कि ज़करबर्ग वहाँ खुद को थोड़ा बाहरी महसूस करते थे,
अच्छा,
तो शायद इसी वजह से वो सोचने लगे कि कैसे सोशल सिस्टम्स को कोड से समझा जाए, या कहें कि सॉल्व किया जाए।
और इसी सोच का नतीजा था वो फेस मैश वाला किस्सा 2003 में।
हाँ, वो काफी कंट्रोवर्शियल था। एक वेबसाइट जिसमें हार्वर्ड स्टूडेंट्स की तस्वीरें थीं और लोग उन्हें हॉटनेस पर रेट करते थे,
अरे बाप रे,
रातों रात वायरल हो गई। हार्वर्ड के सर्वर बैठ गए और ज़करबर्ग तो लगभग निकाले ही जाने वाले थे यूनिवर्सिटी से।
बच गए लेकिन।
हाँ, बच गए। लेकिन किर्कपैट्रिक कहते हैं कि इस पूरे एपिसोड से दो बड़ी बातें सामने आईं।
क्या?
पहली कि लोगों में ऑनलाइन अपनी असली पहचान के साथ आने की, जुड़ने की एक गहरी इच्छा थी, और दूसरी बात जो शायद उस वक्त इतनी साफ नहीं थी, वो थी प्राइवेसी और सहमति, कंसेंट। मतलब लोगों की जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवाल था।
और इन्हीं सब लर्निंग्स के बाद 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड के किर्कलिन हाउस डॉर्म रूम से लॉन्च हुआ द फेसबुक।
हाँ, अपने दोस्तों के साथ डस्टिन मोस्कोविट्स, क्रिस ह्यूज, एडवार्डो सेवरिन, ये कोफाउंडर्स थे।
उस टाइम और भी तो सोशल साइट्स थीं, फेसबुक अलग कैसे था?
सबसे बड़ा फर्क था ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता पर जोर।
अच्छा।
असली नाम, कॉलेज ईमेल आईडी, ये सिर्फ प्रोफाइल बनाना नहीं था।
अच्छा।
ये असल जिंदगी के सोशल कनेक्शंस को ऑनलाइन मैप करने जैसा था, आपका जो रियल वर्ल्ड नेटवर्क है उसका डिजिटल नक्शा।
और ये आइडिया लोगों को पसंद आया?
बहुत पसंद आया, हार्वर्ड में तो हिट हो ही गया, फिर तेजी से दूसरे आईवी लीग कॉलेजों में फैला और फिर देखते ही देखते पूरे अमेरिका के कॉलेजों तक पहुंच गया।
ग्रोथ बहुत तेज थी।
इतनी तेज कि 2004 की गर्मियों में ज़करबर्ग ने एक बड़ा फैसला लिया, हार्वर्ड छोड़ दिया।
पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी?
हाँ, और पूरी टीम के साथ पालो आल्टो कैलिफोर्निया चले गए, सिलिकॉन वैली।
ये तो बहुत बड़ा कदम था।
ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं उनकी मुलाकात शॉन पार्कर से हुई, नैपस्टर वाले शॉन पार्कर।
हाँ, वो तो काफी फेमस नाम है टेक वर्ल्ड में।
बिल्कुल, वो एक तरह से मेंटर बने ज़करबर्ग के लिए। उन्होंने ही ज़करबर्ग को और बड़ा सोचने, मतलब ग्लोबल लेवल पर सोचने के लिए पुश किया।
अच्छा।
पार्कर ने ही उन्हें इन्वेस्टर्स से मिलवाया और वो नाम से द हटाने का सुझाव भी उन्हीं का था,
ताकि वो सिर्फ फेसबुक बन जाए।
हाँ, और यहीं उन्हें पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। पीटर थियल, जो पेपैल के को फाउंडर थे, $5 लाख का एंजल इन्वेस्टमेंट।
तो चीजें सही डायरेक्शन में जा रही थीं, लेकिन मुश्किलें भी आई होंगी।
बिल्कुल, कंपटीशन तो था ही, फिर वो विंकलेवोस ट्विन्स वाला मुकदमा भी शुरू हो गया।
हाँ, वो जिन्होंने कहा था कि फेसबुक का आइडिया उनका था और ज़करबर्ग ने चुरा लिया।
वही, वो केस काफी लंबा चला। और इसी सबके बीच 2006 में एक और बहुत बड़ा मोमेंट आया। याहू ने फेसबुक को खरीदने का ऑफर दिया।
कितने का?
$1 बिलियन।
$1 बिलियन? उस वक्त फेसबुक उतना बड़ा भी नहीं था और ज़करबर्ग सिर्फ 22 साल के थे।
एग्जैक्टली। किताब बताती है कि उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम, उनका बोर्ड सब बेचने के फेवर में थे। भाई, $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी।
तो फिर
ज़करबर्ग ने मना कर दिया।
मना कर दिया?
हाँ, ये किर्कपैट्रिक की किताब का एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन है। ये दिखाता है कि ज़करबर्ग का विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि फेसबुक की कहानी तो अभी शुरू हुई है।
ये तो कमाल का आत्मविश्वास था और लॉन्ग टर्म सोच।
बिल्कुल। इस इनकार के बाद फेसबुक अपने रास्ते पर चलता रहा और फिर आया सितंबर 2006 और न्यूज फीड का लॉन्च।
न्यूज फीड, आज तो हमें आदत है उसकी, लेकिन तब
ये एक भूचाल जैसा था। इसने फेसबुक यूज करने का तरीका ही बदल दिया। पहले आपको दोस्तों की प्रोफाइल पर जाना पड़ता था देखने के लिए कि क्या चल रहा है, अब सब कुछ एक जगह, एक स्ट्रीम में।
लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया था शुरू में, है ना?
बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि उनकी जासूसी हो रही है। इसे स्टॉकर फीड कहने लगे थे लोग।
स्टॉकर फीड क्यों?
उन्होंने लगा कि उनकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी, हर कॉमेंट सब दुनिया के सामने आ रहा है। हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए। लग रहा था कि ज़करबर्ग को ये फीचर वापस लेना पड़ेगा।
लेकिन उन्होंने लिया नहीं?
नहीं। किर्कपैट्रिक बताते हैं कि ज़करबर्ग ने लोगों के गुस्से या शोर पर ध्यान देने के बजाय डेटा देखा।
और डेटा क्या कह रहा था?
डेटा ये दिखा रहा था कि लोग भले ही शिकायत कर रहे हों, लेकिन न्यूज फीड की वजह से वो फेसबुक पर ज्यादा टाइम बिता रहे थे, ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा एंगेज थे।
अच्छा।
तो ज़करबर्ग अपनी बात पर अड़े रहे और न्यूज फीड फेसबुक के एंगेजमेंट का, आप कह सकते हैं, इंजन बन गया। ये उनके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का एक क्लासिक उदाहरण है।
इसके बाद मई 2007 में फेसबुक प्लेटफॉर्म आया, मतलब उन्होंने डेवलपर्स के लिए दरवाजे खोल दिए।
हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। अब दूसरे लोग फेसबुक के ऊपर अपने ऐप्स, अपने गेम्स बना सकते थे। फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं रहा, वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक यूटिलिटी।
और 2008 में शेरिल सैंडबर्ग आई COO बनकर गूगल से।
हाँ, उनका आना भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कंपनी के बिजनेस साइड को संभाला, एडवर्टाइजिंग मॉडल को बढ़िया बनाया, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया।
इससे ज़करबर्ग को फ्रीडम मिली होगी प्रोडक्ट और विजन पर फोकस करने की।
बिल्कुल, वो कंपनी चलाने की रोजमर्रा की टेंशन से थोड़ा मुक्त हो गए। और फिर 2010 तक जब ये किताब आई, फेसबुक 500 मिलियन यूजर्स पार कर चुका था।
50 करोड़,
ये तो वाकई अविश्वसनीय ग्रोथ थी। और इसका असर दुनिया पर भी देखने लगा था, जैसे आपने कहा।
हाँ, किताब में जिक्र है कि कैसे कोलंबिया, मिस्र जैसी जगहों पर एक्टिविस्ट फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो शुरुआती राजनीतिक असर दिखने लगा था।
हालांकि तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
बिल्कुल।
तो ये तो हुई फेसबुक के बनने की कहानी।
अब जरा मार्क ज़करबर्ग की सोच, उनके फिलॉसफी पर आते हैं। किर्कपैट्रिक उसे कैसे देखते हैं?
किर्कपैट्रिक कुछ कोर आइडियाज बताते हैं। पहला है जिसे वो कहते हैं हैकर्स ईथॉस।
हाँ,
मतलब हैकर वाला नजरिया।
उसका मतलब क्या है? कंप्यूटर हैक करना?
नहीं नहीं उसका मतलब है किसी सिस्टम को गहराई से समझना, उसे खोलना और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहना। कोड के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, दुनिया को बेहतर बनाना।
अच्छा,
और दूसरा आइडिया?
दूसरा है रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, मतलब कट्टर पारदर्शिता। ये शायद उनकी सबसे विवादास्पद सोच रही है।
हाँ, ये तो आज भी बहस का मुद्दा है।
बिल्कुल।
उनका मानना था कम से कम उस दौर में कि जितनी ज्यादा जानकारी लोग शेयर करेंगे दुनिया उतनी अच्छी बनेगी। प्राइवेसी उनके हिसाब से कोई फिक्स चीज नहीं थी, वो समाज के साथ टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहती है। और तीसरा कि कनेक्शन अपने आप में अच्छी चीज है, कनेक्शन इज एन इनहेरेंट गुड। फेसबुक का जो मिशन स्टेटमेंट है दुनिया को ज्यादा ओपन और कनेक्टेड बनाना, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी,
ये उनका विश्वास था।
हाँ, किर्कपैट्रिक के अनुसार ये उनका एक मॉरल बिलीफ था, लोगों को जोड़ना फंडामेंटली अच्छा है।
और वो उनका फेमस मोटो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, तेजी से चलो और चीजों को तोड़ो।
हाँ, वो भी इसी फिलॉसफी का हिस्सा था, मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, जल्दी जल्दी नई चीजें बनाओ, उन्हें टेस्ट करो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ टूट जाए
तो उससे सीखो और ठीक करो।
एग्जैक्टली। यूजर्स की नाराजगी को भी वो एक तरह से सीखने का डेटा पॉइंट मानते थे।
इंटरेस्टिंग। और एक बात और किताब में आती है कि वो फेसबुक को कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि सिर्फ एक टूल, एक माध्यम मानते थे।
हाँ, टूल्स नॉट कंटेंट। वो मानते थे कि फेसबुक एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, जैसे कोई पाइपलाइन हो, लोग उसमें अपना कंटेंट डालते हैं, उस कंटेंट की जिम्मेदारी यूजर्स की है, प्लेटफॉर्म की नहीं। ये नजरिया भी बाद में काफी सवालों के घेरे में आया।
खैर, अब उनकी मोटिवेशंस की बात करें, पैसा तो शायद मेन ड्राइव नहीं था जैसा याहू वाले ऑफर से पता चलता है, तो फिर क्या था?
किर्कपैट्रिक कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो पहली, सुलझाने का मजा, दुनिया भर के लोगों के सोशल कनेक्शंस का नक्शा बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, टेक्निकल भी और साइकोलॉजिकल भी। दूसरा, बस एक कूल चीज बनाने की इच्छा, कुछ ऐसा जिसे लोग इस्तेमाल करना पसंद करें। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ी तो दुनिया पर असर डालने, एक लेगेसी बनाने की इच्छा भी आई होगी।
और जब मुश्किलें आती थीं, जैसे न्यूज फीड का विरोध या विंकले वॉस केस, तो वो उन्हें कैसे हैंडल करते थे?
उनका अप्रोच काफी हद तक एनालिटिकल रहता था, डेटा पर फोकस, भावनाओं या शोर शराबे से ज्यादा वो नंबर्स देखते थे, जैसा न्यूज फीड वाले मामले में हुआ।
डिटैच्ड होकर सोचते थे।
हाँ, एक तरह का एनालिटिकल डिटैचमेंट। और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर उनका यकीन बहुत मजबूत था, वो आसानी से भारी दबाव में नहीं आते थे।
और गलतियों पर, जैसे वो बीकन वाला फीचर था जिससे काफी प्राइवेसी इशू हुए थे।
हाँ, बीकन जैसे मामलों में माफी शायद बहुत जल्दी या आसानी से नहीं आती थी, लेकिन किताब दिखाती है कि आखिर में वो पीछे हटते थे, एनालाइज करते थे और फिर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। मतलब गलती को भी एक सिस्टम प्रॉब्लम की तरह देखते थे जिसे ठीक करना है।
तो इस पूरी कहानी में अगर तीन सबसे अहम मोड़ों की बात करें जिन्होंने फेसबुक और जकरबर्ग की दिशा बदल दी, तो वो कौन से होंगे किर्कपैट्रिक की किताब के हिसाब से?
मेरे ख्याल से पहला टर्निंग पॉइंट था 2004 की गर्मियों में हार्वर्ड छोड़कर पालो आल्टो जाना।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये माइंडसेट का शिफ्ट था। फेसबुक अब कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा, वो एक सीरियस एम्बिशियस सिलिकन वैली स्टार्टअप बन गया। शॉन पार्कर से मिलना, पीटर थील का पैसा लगाना, इन सब ने उसे एक ग्लोबल विजन दिया।
ठीक है, दूसरा मोड़?
दूसरा डेफिनेटली 2006 में याहू का $1 बिलियन को ऑफर ठुकराना।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा फैसला था।
बहुत बड़ा। उस एक फैसले ने 22 साल के जकरबर्ग का इरादा साफ कर दिया, दुनिया को भी और अपनी टीम को भी, कि वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं खेल रहे, मिशन पहले पैसा बाद में। इसने फेसबुक की इंडिपेंडेंट पहचान तय कर दी।
और तीसरा, क्या वो न्यूज फीड का लॉन्च था?
हाँ, मैं तीसरा मोड न्यूज फीड के लॉन्च सितंबर 2006 को ही मानूंगा। उसने फेसबुक के यूज करने के तरीके को बदल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस पर जो भारी विरोध हुआ उसके बावजूद टिके रहना।
डेटा के आधार पर?
हाँ, डेटा पर भरोसा करना और यह समझना कि लोग असल में क्या कर रहे हैं, भले ही वो शिकायत कर रहे हों। यह फेसबुक के लिए गेम चेंजर था। इसने न सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाया बल्कि आगे प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसका एक तरीका भी सेट किया।
तो जकरबर्ग और फेसबुक की इस शुरुआती कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? कुछ ऐसे लेसन जो शायद सबके काम आए?
एक तो ये कि आलोचना के बावजूद अपने यकीन पर टिके रहना, खासतौर पर अगर वो यकीन डेटा या गहरी समझ पर आधारित हो। न्यूज़फीड वाला किस्सा यही सिखाता है। कोई भी नया आइडिया, कोई भी बड़ा बदलाव शुरू में अक्सर विरोध झेलता है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास वजहें हैं, तो टिके रहना पड़ता है।
और ज़करबर्ग की अपनी पर्सनल स्टाइल, वो हमेशा हुडी पहनते थे, वो टिपिकल सीईओ वाला लुक नहीं।
हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद ये दिखाता है कि लीडरशिप ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप जैसे हैं वैसे रहकर लीड करना, खासकर इनोवेशन वाले फील्ड्स में, शायद ज्यादा असरदार हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी बने बनाए सांचे में फिट हुआ जाए।
सही बात है। और वो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी वाली बात भी मुझे काफी अहम लगी।
बिल्कुल, ये इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग का महत्व दिखाता है। मतलब अलग अलग फील्ड से आइडिया लेना, जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, खासकर जो इंसानी व्यवहार से जुड़ी हों, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। टेक्नोलॉजी और इंसानी साइकोलॉजी का ये जो मेल था, वही फेसबुक की कामयाबी का एक बड़ा राज था।
और मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स से क्या सबक मिलता है?
शायद ये कि अगर आपको तेजी से ग्रो करना है, तो आपको पुरानी चीजों को छोड़ने और लगातार नया करने, रीबिल्ड करने के लिए तैयार रहना होगा।
परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है।
हाँ, जो सिस्टम कल काम कर रहा था, हो सकता है वो आज की ग्रोथ के लिए काफी न हो। तो बदलाव और थोड़ी उथल पुथल भी जरूरी है।
और आखिर में यूजर्स की सुनना बनाम उनके एक्शन को देखना।
हाँ, न्यूज फीड वाला किस्सा कि लोग जो कहते हैं वो हमेशा वो नहीं होता जो वो असल में करते हैं।
अच्छा,
कभी कभी शिकायतें बहुत ऊंची आवाज में होती हैं, लेकिन असल यूजर बिहेवियर का डेटा शायद ज्यादा सच्ची कहानी बताता है। ये आज के प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए भी बड़ा सबक है।
बिल्कुल, ये सारे सबक दिखाते हैं कि एक टेक कंपनी की कहानी में भी लीडरशिप, विश्वास, बदलाव का सामना करने जैसे गहरे मानवीय पहलू होते हैं।
हाँ,
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम तीन खास बातें श्रोताओं के लिए निकालें इस किताब और ज़करबर्ग की शुरुआती यात्रा से, तो वो क्या होंगी?
पहली मैं कहूंगा एक इमोशनल इनसाइट, वो पल जब 22 साल के ज़करबर्ग ने उस बोर्ड रूम में अनुभवी लोगों के सामने $1 अरब ठुकरा दिए।
हाँ, वो वाकई एक पावरफुल मोमेंट रहा होगा।
वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, वो एक युवा फाउंडर का अपने विजन पर अटूट विश्वास था, एक अनदेखे भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव। ये उस पैशन और यकीन की ताकत दिखाता है।
ठीक है, दूसरी बात, कोई इंटेलेक्चुअल इनसाइट।
दूसरी मेरे हिसाब से सोशल ग्राफ के कॉन्सेप्ट का महत्व है। किर्क पैट्रिक समझाते हैं कि फेसबुक की असली ताकत उसके फीचर्स या पोस्ट्स में नहीं थी।
तो किसमें थी?
वो थी लोगों के आपसी रिश्तों के उस अदृश्य नक्शे में। कौन किसे जानता है, कौन किस पर भरोसा करता है, इस ग्राफ को समझना और बनाना, यही फेसबुक का असली इंटेलेक्चुअल काम था। इसने इंटरनेट को सिर्फ जानकारी के ढेर से आगे बढ़कर लोगों के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करने की नींव रखी।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
और तीसरी, कोई यूनिवर्सल बात जो सबके काम आए। अस डेटा है, अपने विजन में यकीन है, और आप ये समझ पाते हैं कि लोग असल में क्या कर रहे हैं उनकी शिकायतों से परे जाकर, तो आप उस शुरुआती मुश्किल को पार करके कुछ टिकाऊ और असरदार बना सकते हैं। ये सबक सिर्फ टेक में नहीं, लाइफ में कहीं भी लागू होता है।
बिल्कुल सही। फेसबुक की कहानी बेशक इसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स हुई,
लेकिन ये शुरुआती दौर हमें इनोवेशन, महत्वाकांक्षा और हमारी डिजिटल दुनिया कैसे बनी इसके बारे में बहुत कुछ सिखाता है।
सही कहा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।